नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। इस पुस्तक का नाम मीका नबी के नाम पर रखा गया, जिसका अर्थ है कौन है जो यहोवा के समान है। मीका नबी अपने नाम के कारण झूठे नबियों तथा पापियों के लिए चुनौती था। मीका का संदेश यहूदा में हिजकिया द्वारा धर्म सुधार के पहले की अवस्था प्रकट करता है। जी हाँ, मीका नबी के संदेशों में दंड तथा आशा दोनों की वाणी है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु। प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का तेरा प्यार।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज फिर से पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना के पत्री से कर रहे थे और हमने उसका समापन किया और हमने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया है। आज हम अपने अध्ययन को एक नई पुस्तक के साथ आरंभ करते हैं जो मीका नबी की पुस्तक है पुराने नियम से। लेकिन इससे पहले कि आज हम उसके प्रस्तावना को और कुछ पदों का अध्ययन करें, आइए हम सब प्रार्थना करें और इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से आशीष मांगे ताकि इस अध्ययन के द्वारा हम अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम मीका नबी की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस पुस्तक के अध्ययन पर आप अपनी आशीष प्रदान करें, हम इससे प्रत्येक को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दें ताकि हम जो कुछ भी इस पुस्तक के द्वारा से सीखते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं। निश्चित रूप से हम में से हर एक के जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण बने। हमारी प्रार्थना है कि हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप हमारे प्रत्येक श्रोताओं की रक्षा करें। उनके बीमारों से आप उन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे, ताकि वे भी आपके प्रेम में बढ़ने पाए, बलवंत होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और एक नई पुस्तक मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मीका और उसके संदेश के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके नाम का अर्थ है जो यहोवा के स्वरूप है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए कि उसके नाम का अर्थ है जो यहोवा के स्वरूप है। यह शब्द माइकल का ही मूल रूप है। माइकल या मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत है। धर्मशास्त्र में अनेकों का नाम मीका रहा है, परंतु इस मीका की पहचान है कि वह मोरेशेत वासी मीका है। इसे हम एक अध्याय उसके एक पद में देखते हैं। उसके अध्याय एक पद 14 के अनुसार वह गत के मोरेशेत में रहता था। यह स्थान यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर स्थित था और लाकरीश के निकट था। अतः उसे धर्मशास्त्र का अन्य कोई मीका आप न समझें। उसने यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के राज्य काल में भविष्यवाणी की थी, परंतु उसकी भविष्यवाणी शोमरोन और यरूशलेम से संबंधित थी। शोमरोन उत्तरी राज्य इसराइल की राजधानी थी और यरूशलेम दक्षिणी राज्य यहूदा की राजधानी थी। यद्यपि मीका दक्षिणी राज्य यहूदा का निवासी था, उसकी भविष्यवाणी का विशेष अधिकार, या यूं कहें कि अधिकतर समय उत्तरी राज्य से संबंधित रहा है। उसकी भविष्यवाणी का समय वह था जब अश्शूरों ने उत्तरी राज्य को बंदी बनाया और यहूदा को घेर लिया था। मीका यशाया, होशे और आमोस का समकालीन था और अति संभव है कि वह यशाया का मित्र था। उसकी भविष्यवाणी की पुस्तक को यशाया की लघु पुस्तक भी कहा जाता है। इन दोनों की भविष्यवाणियों में असाधारण समानताएं हैं। छोटे भविष्यद्वक्ताओं में मीका अधिकांश लोगों का मनभावन है, अर्थात यूं कहें कि वह मनभाता भविष्यद्वक्ता है। लेखन शैली के आधार पर यह एक असाधारण पुस्तक है। जी हाँ, यदि आप सुंदर भाषा, कविता, साहित्य प्रेमी हैं तो आप निश्चय ही मीका की पुस्तक को सराहेंगे। मीका के लेख मर्मवेदी और वैयक्तिक हैं। मीका कटु, मर्मस्पर्शी और कोमल था। वह यथार्थवादी और संवादी था। वह बहुत अच्छा युद्ध संवाददाता बनता। उसकी पुस्तक में विशेष सौंदर्य है। उसने परमेश्वर का दंड तो सुनाया, परंतु उसकी असीम कोमलता के साथ। जी हाँ, विश्वास उसके अनेक संदर्भों से परिचित है, जबकि वे जानते नहीं कि वह मीका की पुस्तक से है। आने वाले दंड में अंधकार के पार मीका इसराइल की मुक्ति की महिमा को देख रहा था, जिसके कारण उसकी यह पुस्तक असाधारण है। मीका ने इसराइल के नगरों और यहूदा के यरूशलेम पर परमेश्वर के दंड की घोषणा की थी। ये नगर उनके निवासियों पर प्रभाव डालते थे और उनकी समस्याएं आज के समान ही हैं। मीका ने उत्पात, भ्रष्टाचार, लूटमार, लालच, भौतिकवाद की अति आत्मिक शून्यता और अवैध यौनाचार का विरोध किया था। उसे नगर भविष्यद्वक्ता कहा जा सकता है। मेरे मित्रों, मीका के विषय वस्तु को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रथा के अनुसार मीका को दंड का भविष्यद्वक्ता भी कहा गया है। यह सच प्रतीत होता है, क्योंकि पहले 3 अध्यायों में दंड पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। तथापि प्रथम 3 अध्यायों के भर्त्सनाकारी होने के उपरांत अंतिम 4 अध्याय सांत्वनादायक है। उसका प्रश्न धर्मशास्त्र के सर्वप्रिय अध्यायों में से एक में पाया जाता है, तेरे जैसा कौन है, अर्थात परमेश्वर के तुल्य कौन है। मीका जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इस विषय पर बल देता है। प्रथम 3 अध्यायों में वह कहता है कि परमेश्वर के तुल्य घोषणा करने वाला अर्थात गवाही देने वाला कौन है। अध्याय 4 और 5 में परमेश्वर के तुल्य भविष्यवाणी करने वाला अर्थात सांत्वना देने वाला कौन है। अध्याय 6 में परमेश्वर के तुल्य याचना करने वाला कौन है। और अध्याय 7 में परमेश्वर के तुल्य क्षमा करने वाला कौन है। इसी कारण मीका की पुस्तक एक अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर का दंड और मुक्ति। मेरे विचार में इसका मुख्य पद है अध्याय 1 उसका 7 और 18 पद। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परंतु वह पापियों के प्राण से प्रेम रखता है और वह उनका उद्धार करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी पापी नष्ट हो या दंड पाए। दंड को परमेश्वर का विचित्र कार्य कहते हैं, क्योंकि वह किसी को भी दंड देना नहीं चाहता है, क्योंकि वह पाप से घृणा करने वाला पवित्र परमेश्वर है और उसे विद्रोह का दमन करता है। उसके पास अन्य कोई मार्ग नहीं है, परंतु वह पापियों को बचाना चाहता है। और यदि वे विश्वास करके उसके पास आए तो वह उन्हें बचा लेगा, वह उनके पापों को क्षमा कर देगा। मेरे मित्रों, इसका विभाजन बड़ा ही रोचक है। मीका ने 3 भविष्यवाणियां की थी और प्रत्येक भविष्यवाणी सुनो शब्द से आरंभ होता है। 1 अध्याय उसका 2 पद, 3 अध्याय का 1 पद और 6 अध्याय का 1 पद। पहला संदेश सब श्रोताओं से संबंधित है, यानी कि सब लोग। दूसरा संदेश विशेष करके इसराइल के अगुओं के लिए था। और तीसरा संदेश एक व्यक्तिगत निवेदन है कि इसराइल मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आए। मीका की पुस्तक से यर्मिया ने संदर्भ दिया था। यर्मिया की पुस्तक 26 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, यहूदा के राजा हिजकिया के दिनों में मोरसेत वासी मीकायाह भविष्यवाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सियोन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। परंतु निवासियों ने तो मीका की सुनी भी और न ही यर्मिया की सुनी, और परिणाम स्वरूप ठीक वैसा ही हुआ जैसा मीका ने कहा था। मुझे प्रचारक प्रायः पूछते हैं कि मीका की पुस्तक पर प्रचार करते समय कहां से आरंभ करें? तो मैं कहता हूं कि पूरी पुस्तक के संदेश को समझना आवश्यक है। लेखक क्या कहना चाहता है, इसका मुख्य संदेश क्या है? मीका की पुस्तक में मुख्य बातें हैं गवाही देने में, साक्षी देने में, भविष्यवाणी में, निवेदन करने में और क्षमा करने में परमेश्वर के तुल्य कौन है। मेरे मित्रों, आइए हम इसी के साथ अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हैं और मीका की पुस्तक अध्याय 1 में आते हैं और इसके विषय को देखें। भविष्यद्वक्ता का पहला संदेश सामरिया के विरुद्ध यरूशलेम के लिए। जैसा मैंने प्रस्तावना में कहा है कि मीका के पुस्तक के प्रथम 3 अध्याय भत्सरनाकारी हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में एक असाधारण कथन है, या तो एक पद में या अनेक पदों में, जैसा अध्याय 1 में है। तो मेरे मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं मीका नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद। यहां पर लिखा हुआ है, यहुआ का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में मोरेशेत वासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। शोमरोन या सामरिया उत्तरी राज्य की राजधानी थी, जिसका निर्माण इसराइल के राजा ओमरी ने किया था। यह स्थान मूर्ति पूज्य या मूर्ति पूजा का गढ़ था। आहाब और इजेबेल ने वहां पर बाल का मंदिर बनवाया था। उस युग में यह नगर एक रमणीय प्राकृतिक स्थान था, परंतु आज वह खंडहर बना हुआ है। इस नगर के खंडहर में मीका की भविष्यवाणी के मुख्य गवाह हैं। लिखा है, मोरेशेत वासी मीका अर्थात गत नगर के मोरेशेत गांव का रहने वाला मीका। यह स्थान यरूशलेम से दक्षिण पश्चिम में स्थित था, अर्थात मीका यहूदा वासी था, परंतु उसकी भविष्यवाणी इसराइल के लिए थी। मीका यशाया से आयु में कम था, इस कारण उसने सोचा कि यहूदा के लिए यशाया ही बहुत है, और वह परमेश्वर का संदेश लेकर इसराइल को पहुंचा। मीका को गलत समझा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी भविष्यवाणियां अति स्पष्ट और बहुत ही सीधी है। मैं यूं कहूं कि उसकी भविष्यवाणियां अति स्पष्ट हैं कि वह किसको संबोधित कर रहा है। हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता का प्रथम संदेश मीका नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे, प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो। एक व्यक्ति नहीं, एक समाज नहीं, एक कुल नहीं, परंतु कह रहा है कि जाति जाति के सब लोगों सुनो, अर्थात जगत के सब लोगों जिनमें आप और मैं भी हूं। मीका का संदेश हमारे लिए भी है, यद्यपि वह किसी स्थिति विशेष में भविष्यवाणी कर रहा था जो अब नहीं है, उसका संदेश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उसमें कुछ सिद्धांत प्रतिवादित किए गए हैं। मीका मानवीय प्रशासन का तर्क प्रस्तुत करता है, वह प्रशासन में उचित तथ्य को लाना चाहता है। उचित तथा अनुचित अधिकार की वह चर्चा करता है। परमेश्वर का प्रशासनिक सिद्धांत जानना किसी भी सरकार के लिए हानिकारक नहीं होगा। मेरे मित्रों, हम सोचते हैं कि सरकार का किसी रूप में होना आवश्यक है, परंतु ऐसा नहीं है। इंग्लैंड के राजा क्रॉमवेल का उदाहरण ही लीजिए, वह निरंकुश शासक था और माना जाता था कि उसका प्रशासन सर्वोत्तम था। तानाशाही यदि उचित हाथों में हो तो वह सर्वोत्तम शासन होगा। प्रभु यीशु जब इस संसार पर राज्य करेगा तब वह भी एक तानाशाह ही होगा। शासक का चरित्र सबसे अधिक अर्थ रखता है। सरकार चाहे कैसी भी क्यों ना हो, निर्णय लेने वाले सही होना चाहिए। मीका इसकी परिभाषा देता है, 3 अध्याय उसके 11 पद में। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यद्वक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। मेरे मित्रों, मीका कहता है कि उनके भविष्यद्वक्ता, उनका धर्म, उनके अगुए सब के सब झूठे हैं। इसलिए वह कहता है, हे पृथ्वी, तो उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। हम सब भी इस पृथ्वी पर हैं, इसलिए हम सबको भी ध्यान से सुनना है, सुनने की आवश्यकता है। लिखा है, प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध साक्षी दे। मीका परमेश्वर को पुकारता है कि वह उसकी भविष्यवाणी का गवाह हो। तब हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से, जी हां, परमेश्वर जैसे आज स्वर्ग में है वैसे ही उस समय भी स्वर्ग में था, परंतु यहां पर लेखक कहता है, मीका कहता है कि उस पवित्र मंदिर में से अपनी साक्षी देगा। मीका की पुस्तक 1 अध्याय के 3 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। यद्यपि यह भाषा भय उत्पन्न करती है परंतु अति सुंदर है। लिखा है, पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। मेरे मित्रों, स्मरण करें कि उन्होंने ऊंचे स्थानों पर पूजा स्थल बनाए हुए थे, पर्वतों के वृक्ष कुंजों में। उस युग में तो नगर भी पर्वतों पर ही बसे हुए होते थे, शोमरोन और यरूशलेम भी पर्वतों पर बसे हुए थे। प्रभु यीशु ने कहा था कि पर्वत पर बसा नगर छिपता नहीं है, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 14 पद में। ऐसे नगर का प्रभाव जन जीवन पर पड़ता था। यदि उस नगर में प्रशासनिक मुख्यालय हो तो उसका प्रभाव संपूर्ण जगत पर पड़ता था और आज भी पड़ता है। वे नगर पाप का केंद्र भी थे जिसके कारण परमेश्वर उन्हें दंड देने के लिए उतरेगा। वह पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा अर्थात रौंदेगा। मीका नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। लिखा है, पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी। मेरे प्रियो, यह ज्वालामुखी और भूकंप की दशा है। यही भाषा न्यायों से हबकूक तक की पुस्तक में पाई जाती है। आप देखिए भजन संहिता 18 उसके 7 से 10 पद में, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था, उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुककर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवार होकर वेग से उड़ा। जी हां, यद्यपि यह भाषा रूपात्मक है, इसमें सत्य का वर्णन है। अब एक प्रश्न उठता है, प्राकृतिक शक्तियों का कौन नियंत्रण रखता है? परमेश्वर ही है जो प्रकृति अर्थात भूकंप, ज्वालामुखी और मौसम को अपने वश में रखता है। आज मौसम भी बदल गए हैं, सब कुछ बदल रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? मनुष्य के पाप के कारण बहुत सारे चीजों में परिवर्तन आ रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं मानता हूं कि परमेश्वर जाति जाति का न्याय करता है, वह सब मनुष्यों का न्याय करता है और ये हमारे लिए चेतावनी है, परंतु हम ध्यान नहीं देते हैं। संसार की प्रत्येक गतिविधि में परमेश्वर का हाथ होता है। मुझे रोमी साम्राज्य के मुख्य नगर जैसे इफिसुस और पिरगामुस आदि का स्मरण होता है जो आज खंडहर हैं। क्यों? आप कहेंगे कि वह भूकंप संभावित क्षेत्र है। जी हां, परंतु ऐसा है क्योंकि मनुष्य भूकंप क्षेत्र में ही वास करता है। भूकंप परमेश्वर का दंड ही था। आज भी हम चारों तरफ तबाही देखते हैं। समय के अंतराल में परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, हमें सचेत करता है कि हम पृथ्वी के उन मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को देखें, अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने आप को सुधारें। परंतु हम तबाही को देखने के बावजूद भी हम उसकी ओर नहीं फिरते हैं। हम अपने मर्जी में ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मेरे श्रोताओं, आज हम अपने जीवन की ओर झांक करके देखें। जो कार्य आज हम कर रहे हैं, क्या इसे देख करके परमेश्वर प्रसन्न होगा? क्या वह मुझे देख करके आनंदित होगा? आज मुझे और आपको मीका के इस वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो। शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो। पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो। तेरी शुद्धता मुझ में हो।